चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 21 भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं है। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800, 8000, 80000, 8 लाख, 8 करोड़ मील है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की शक्ति के परे है। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित हैं, क्योंकि सारे वैकुंठ लोक पर व्योम के किसी एक एक कोने में स्थित हैं, अतः उस पर व्योम को कौन माप सकता है। पर व्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण है और हर एक में अवतारों का निवास है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर ले, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं। हजार सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों का पास नहीं पा सकते। यद्यपि वे निरंतर उनका महिमा गान करते हैं। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है। यद्यपि हजार पनों वाले भगवान से निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा सके हैं। अनंत देव को भी जाने दे, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हे प्रभु, आप अनंत हैं, ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते, न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह सात आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। यह समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। इन सारे तर्कों न्याय नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सब की सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे। उनकी सही सही संख्या कोई नहीं गिन सकता था। हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। सारे ग्वाल बालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी छड़ियां बांसुरियां कमल के फूल सींग के बाजे वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए और क्षण भर में ही वे सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने यह लीला देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद यह निर्णय किया। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि वह कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में सब कुछ जानता है तो वह भले ही ऐसा सोचता रहे किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूँ। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। उन्हें ऐसा सोचने दें। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहाँ तक आपके वैभव का संबंध है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच के बाहर हैं। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे, भला उन सब से अवगत कौन हो सकता है। उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव हैं। कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक 32 मील फैला हुआ है, फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित हैं। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह असीम है, फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है, उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा और उनका मन तथा उनकी इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गई। इस तरह वे विशुद्ध हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए वे स्वयं ही इसकी व्याख्या करने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के स्वामी हैं। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं, पूरी होती हैं। सारे लोकों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना अपना कर चुकाते हैं तथा बेटे प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे सबसे महान है। न तो कोई उनके बराबर है न कोई उनसे बढ़कर है। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। समस्त कारणों के कारण होने से उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। फिर भी वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण उन सब के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता हैं। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयदीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के तीन पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। महाविष्णु, पद्मनाभ तथा शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा हैं। यद्यपि महाविष्णु, पद्मनाभ तथा शिरोदक्षाई विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय तथा अधीश्वर नियंता हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं, अतएव वे आदि भगवान हैं। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु इनके पूर्ण अंश के अंश हैं। यह तो मध्यम अर्थ है, अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के तीन निवास स्थान हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से बली भांति जाने जाते हैं। अंतरंग आवास अंतःपुर गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहीं पर कृष्ण के अपने सखा, पार्षद, पिता तथा माता रहते हैं। वृंदावन कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के साथ रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। वृंदावन लोक के नीचे पर व्योम है, जो विष्णु लोक कहलाता है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं, जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। पर व्योम जो कि छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं, जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान हैं और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। इन असंख्य लोकों में छह ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम तथा हरि धाम नामक लोक हैं। वे विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्य पूर्ण है। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। इस प्रकार यह नदी प्रवाहित होती है। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अखंड, नित्य, अव्यय तथा असीम है। यह परम धाम है, जहाँ भगवान का तीन चौथाई ऐश्वर्य विद्यमान है। यह पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। विरजा नदी के उत्पाद बाह्य आवास है, जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास हैं। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसके निवासी बद्धात्माएं हैं। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती हैं। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम सम्मिलित हैं। पर व्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे हैं। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग त्रिपाद माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 एक पाद शक्ति होता है। यही हमारी जानकारी है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए यह त्रिपाद भूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान की 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एक पाद कहलाता है। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन शक्ति के परे है, अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगा पाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं, जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं है। एक बार जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी। जब कृष्ण को यह बताया गया तो उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा, उनका नाम क्या है। अतः द्वारपाल लौट गया और उसने ब्रह्मा से पूछा। जब द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बतलाया और भगवान कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि उन्हें भीतर आने दिया जाए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले गया और यों ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। ब्रह्मा द्वारा पूजा किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों से उनका सम्मान किया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं। पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो मैं बाद में बतलाऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ। पहले तो मेरे मन में एक संदेह है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप कृपया दूर कर दें। आपने यह क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपको मिलने आया है? ऐसे प्रश्न का क्या अभिप्राय है? क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्मा भी है? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान मग्न हो गए। देखते ही देखते वहां असंख्य ब्रह्मा आ गए। इन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 सिर थे तो किसी के 20, किसी के 100 शिर थे तो किसी के 1,000, किसी के 10,000 तो किसी के 1,00,000, किसी के एक करोड़ तथा किसी के एक अर्बुद शेर थे। उनके मुखों की संख्या की गणना कोई नहीं कर सकता। उस समय वहां अनेक शिव भी आए जिनके लाखों तथा करोड़ों विविध शेर थे। अनेक इंद्र भी आए और इनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थीं। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। वहां जितने ब्रह्मा थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हो। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। तब सब ने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम सभी सुखी हो? क्या असुरों से तुमको कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया है। यह द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा, अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के चार शिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली है। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूं। वे भले ही ऐसा सोचते रहे, जहां तक मेरा सवाल है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहां तक आपके ऐश्वर्यों का संबंध है वे सब मेरे मन शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतएव यह सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है, इसीलिए तुम्हारे केवल 4 सिर हैं। कुछ ब्रह्मांड व्यास में 100 करोड़ योजन, कोई 1 लाख करोड़ योजन, तो कोई 10 लाख करोड़ योजन, तो कोई कोई करोड़ करोड़ योजन के हैं। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता है। विरजा नदी के उत्पाद आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। इस तरह कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा किया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं कर सकता। त्रयधीश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, जो यह बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। लोक 3 हैं: गोकुल, गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं 3 स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं। ये 3 स्थान अंतरंगा शक्तियों से पूर्ण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों तथा वैकुंठ लोकों के समस्त अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियों ने भगवान को नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया है। जब सारे अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियां भगवान के सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराई, तो जन जन की आवाज उत्पन्न हुई और ऐसा लगता था मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हों। इस तरह कृष्ण सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव चर ऐश्वर्य कहलाता है। क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। यह वेदों का कथन है। कृष्ण की असीम शक्तियां अमृत के सागर के समान हैं। क्योंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी 1 बूंद का स्पर्श मात्र किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुरी में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक सुनाया। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयुक्त 1 रूप प्रकट किया। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। उनका मनुष्य रूप सर्वोत्तम दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं। वे अपने हाथ में वंशी लिए रहते हैं और उनकी कैशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। वे तीनों जगतों के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध तत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वह कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये कृष्ण के छह ऐश्वर्य हैं। वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी चार चांद लगा देता है। इन समस्त सुंदर लक्षणों के भी ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के मनों को भेजने वाले बाणों का काम करती हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो उठते हैं। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत पर व्योम के उन समस्त पुरुषों को भी आकृष्ट करने वाला है, जो कृष्ण के विस्तार है। इस तरह समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मन रूपी रथों पर चढ़कर तथा उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव के पांच बाण हैं, जो रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श के द्योतक होते हैं। कृष्ण इन पांचों बाणों के स्वामी हैं। और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं। यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है, कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रास लीला करते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गौवें चरती रहती हैं। यह भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव जिसमें वृक्ष पौधे पशु तथा मनुष्य सम्मिलित हैं कांपने लगते हैं और हर्ष से पूरित हो उठते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहने लगती है। कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोती की माला श्वेत बगुलों की पंक्ति जैसी लगती है। उनके बालों में लगा मोर पंख इंद्रधनुष जैसा और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली जैसे लगते हैं। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं और गोपियां खेत में खिले नए गेहूं जैसी लगती हैं। इन नई खिली फसलों पर अमृतमयी लीलाओं की निरंतर वर्षा होती है और ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही हैं जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, जिसके कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत होते हैं। ऐसी माधुरी उनके गुणों का सार है। व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्तगण भगवत प्रेम में उन्मत्त हो उठते हैं। जिस तरह मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भावमय वर्णन किया है, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया और वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थाम कर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी, वे कृष्ण के रूप के उस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी न तो समानता हो सकती है न जिसको लांगा जा सकता है। वह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वह स्वयं सिद्ध चिर नवीन तथा अद्वितीय है। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्तों और तिनकों की तरह है। जब वे चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर ऊपर कभी नहीं उठते, अपितु कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर पड़े रहते हैं। हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की है कि वे उनकी दिव्य सुंदरता तथा माधुरी को अपनी आंखों से जी भर कर पी रही हैं। इस तरह वे अपने जन्म शरीर तथा मन को सफल बनाती हैं। गोपियों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वह अद्वितीय है। उस भावमयी माधुरी के समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता नारायणों में भी वह माधुरी नहीं है। निसंदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं है। नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी ने कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से ही सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या की। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों की नित्य खान हैं। उनके अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाते हैं। गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रतिक्षण नूतन होता जाता है और कृष्ण की शारीरिक कांति तथा माधुरी को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक होड़ती लग जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति मंत्र योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम द्वारा किया जा सकता है जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भावमय आदान प्रदान केवल वृंदावन में संभव है जो दिव्य प्रेम के ऐश्वर्य से ओतप्रोत है। कृष्ण का स्वरूप समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। यह रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य होता है उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत हैं तथा सबके आश्रय हैं। सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि ये सभी कृष्ण में प्रकट होते हैं किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार मृदुता तथा उदारता के अन्य गुण पाए जाते हैं। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्टि गोचर नहीं होते। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। विशेषतया वृंदावन में सारी गोपियां आंखों के इस दोष के लिए ब्रह्मा की निंदा करती हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की। इस तरह उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों से लटकते मकराकृति कुंडलों की शोभा देखने के अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल तथा खिलवाड़ करती हंसी, ये सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। किंतु आंखों का झपकना ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे वे उस शोभा को देख नहीं पाते। इसी कारण से पुरुष तथा स्त्रियां सत्रष्टा ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध थी। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर घुंघराले केशों से घिरा हुआ है, नहीं देखती, तब आधे क्षण का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। तब हम उस सत्रष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलके लगा दी हैं, मात्र मूर्ख समझती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं। इस तरह तीनों जगत काममय हो जाते हैं। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मणियों जैसे हैं। दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अर्ध चंद्रमा माना गया है और वहां लगे चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं और वे उनके साथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उस वंशी की तान है। उनके पांवों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उनके नुपुरों की झंकार है। कृष्ण का मुख विलासी राजा है। उनका वह पूर्ण चंद्रमा रूप मुख उनके मकराकृति कुंडलों तथा कमल नेत्रों को नचाने वाला है। उनकी भौहें धनुष के समान है और उनकी आंखें बाणों जैसी हैं। उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं और जब उनकी आंखें उनके कानों तक फैलती हैं, तब कृष्ण गोपियों के हृदयों को बींद देते हैं। उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार हाथ को विस्तृत करता है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मृदु हंसी की चंद्र किरणों को खरीदते हैं तो कुछ उनके होठों के अमृत को। इस तरह वे सबको तुष्ट करते हैं। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है और यह सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है तो वह अपनी केवल दो आंखों से क्या आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उसका लोभ तथा उसकी तृष्णा दोनों दुगुने बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से पी न सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है और सत्रष्टा की आलोचना इसलिए करने लगता है कि उसने दो से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है तो वह सोचने लगता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उसने मुझे केवल दो ही आंखें क्यों दी हैं? यहाँ तक कि ये दोनों आंखें भी पलक झपकने के कारण विचलित हो उठती हैं, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार देख नहीं पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क तथा रस विहीन है। विधाता केवल एक शुष्क रस शून्य सत्रष्टा है। वह यह भी नहीं जानता कि किस तरह वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। सत्रष्टा कहता है, जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी दो ही आंखें हो। जरा इस सत्रष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो। यदि वह मेरा परामर्श मानता तो वह कृष्ण का मुख देखने वालों को करोड़ों आंखें देता। यदि वह मेरे इस परामर्श को मान ले तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में पटु है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई है। उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है और इससे भी अधिक अद्वितीय दूसरा दृश्य उनकी मुस्कान है, जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसी है। सनातन गोस्वामी से ये बातें बतलाते बतलाते श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे। उन्होंने भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया, हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधु गंध की तरह है और भी मधुर है। हे सनातन, कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी है। यद्यपि मेरा मन इस समय सन्निपात से ग्रस्त है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूँ, किंतु दुर्दैव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है और उस चंद्रमा जैसे मुख पर परम मंद हंसी चांदनी की किरणों जैसी है। कृष्ण की हंसी सर्वाधिक मधुर है। उनकी हंसी उस पूर्ण चंद्रमा की तरह है जो अपनी किरणों को तीनों लोकों में गोलोक वृंदावन, वैकुंठ तथा देवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह कृष्ण की उज्जवल सुंदरता दसों दिशाओं में फैल जाती है। उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाती है। इस तरह यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और व्रज भूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्दत है और यह समस्त पतिव्रताओं के व्रतों को भंग करती है। इसकी ध्वनि उन्हें भलाक उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती है, तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए। उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के समक्ष उनके अधो वस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियां अपने घर का काम काज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस तरह उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार लज्जा तथा भय भाग जाते हैं। उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर सदा बना रहता है। वह उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होने देती। निसंदेह गोपियां न तो कुछ और सुन पाती हैं, न ही किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं, न ही वे समुचित उत्तर दे पाती हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे ऐसे हैं। पुनः अपनी बाह्य चेतना में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वह नहीं कह पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य तथा माधुरी प्रकट की है। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी हैं। क्योंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं भगवान कृष्ण की दिव्य माधुरी के अमृत सागर की तरंगों द्वारा बहाए लिए जा रहा हूँ। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे। अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए वे पुनः सनातन गोस्वामी से बोले, यदि किसी को श्री चैतन्य चरिता अमृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र होगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ है।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.